बोले मैं आपकी सेवा काम में मदद दूंगी। क्या मदद देगी सावित्री? मेरा कोई पूर्व जन्म का ऐसा संस्कार आज मैं इस जन्म में भोग रहा हूँ। कभी मैं भी राजा का लड़का था और कहने लगा
ये पूर्व जन्म के करे पाप न
तेरे को यहाँ तक भी बस्ती में मारने के लिए भी जाना पड़ेगा। बोला मंजूर है। बोले मंजूर तो चौकी बने एक दुख हो रहे मेरे कौन सा
ये चंद्रलाल
लेकिन आज चारों तरफ इस दहेज की चर्चा चल रही है। इस दहेज के लिए आर उस औरत को मारने के लिए आतुर हो जाते हैं। आज चारों तरफ ये शोर मच रहा है। सजनों, क्या वो राजा दहेज में सब कुछ नहीं दे सकता था? सब कुछ दे सकता था, लेकिन सबसे बड़ा दहेज क्या होता? कन्या के लिए माँ बाप का आशीर्वाद होता है। फेरे हो जाने के बाद में राजा अश्वपति बोला बेटी मांग दहेज में। तू कह दो तेरे को आधा राज दे दो, तू कह दो तेरा सारा पिछला दरिद्र धो दो। सावित्री तो बड़ी विद्वान थी ना, उसने कहा कि मुझे दहेज की कोई जरूरत नहीं है पिताजी, माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए और आगे आने वाले जो सासू ससुर वो मेरे माँ बाप होंगे, मैं उनकी सेवा करूंगी, इसी में मेरा कल्याण है। माँ बाप आशीर्वाद देते हैं कि जाओ बेटी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। आज के समय में दोनों चले जाते हैं और सुबह होते ही आर माता पिता के पास पहुंच गया है और सेवा में लग गया है। सत्यवान तो वहां बड़ा पुरानिया धंधा अपनाया भाई, क्योंकि चिंता ज्यादा होगी ये कुड़वा बिट गया, डोरी और कुल्हाड़ा उठाया। सावित्री कहने लगी प्राणनाथ आपके काम में मदद देने के लिए मैं साथ चलूंगा। राजी ना लगे तेरे पीर का लो जिंदगी मचाइए। लेकिन सावित्री उसको हिम्मत बना देती कि नहीं प्राणनाथ, आप गर्मी में काम करके आते हैं, आपको ऐसा ही है, आप कहे तो मैं आपके काम में मदद दे सकते हूँ। बोले ये तो हमारे कुल की रीति नहीं है। इस प्रकार से 9 महीने बीत जाते हैं, 10 महीने बीत जाते हैं, 11 महीने बीत जाते हैं, 12वां महीना आ जाता है और वो नारद के कह रहे थे कि बाहर राम नवमी होगी, बाहर इतवार होगा और दिन के 12 बजे तेरे पति को पेड़ पे चढ़ेंगे, चक्कर आएंगे, उस समय प्राण पखेरु उड़ेंगे। उस दिन सावित्री हट कर लेती है और कहती है कि प्राणनाथ मैं आपके आज साथ चलूंगी। मरते वक्त तक भी सावित्री अपने पति को नहीं बताती कि तू मरेगा। तो उस दिन हट कर लेती है सावित्री। पीछे पीछे सुबह का वक्त था और जंगल बियाबान की ओर चले जा रहे दोनों सुंदर सारस की जोड़ी, उनको देख करके और प्रकृति में उदासी छा गई। पेड़ों के पत्ते भी नहीं हिलते हैं, पेड़ों में रहने वाले पक्षी हैं, उन्होंने सुंदर सलोनी जोड़ी को देख करके उन्होंने भी मौन धारण कर लिया और अपने मन में प्रार्थना कर ली कि हे भगवान तेरे घर में क्या न्याय है, इसलिए ये सुंदर जोड़ी का तू आज बिछुआ करेगा। सावित्री ने चारों तरफ आलम देखा तो सन्नाटा छा रहा है। सावित्री ने जान लिया कि हाँ काल ने तो चक्कर तो लगा लिया है। सत्यवान आगे, सावित्री पीछे चली जा रही। सत्यवान पेड़ पर चढ़ता है, होन हार बलवान होती है और जिना पेड़ में काम काटा करे, लेकिन जन्नाड़ है वो ऊसरी टूंगा उजाटेंगे वही। और दिन के 12 बजे और कहने लगा सावित्री बात क्या है ये कुल्हाड़ा लेकर के, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कोई मेरे कोई काट रहा है, मेरा दम घुटा जा रहा है, मुझे तू किसी भी प्रकार से पेड़ से नीचे उतारो। सावित्री कहने लगी प्राणनाथ ऐसे ही कोई गर्मी का चक्कर आ गया, आप वीर पुरुष है नीचे उतरो। बोले सावित्री मेरे से उतरा नहीं जाता है। सावित्री प्राणायाम योग के द्वारा किस प्रकार पेड़ से नीचे उतारती, सत्यवान क्या कहता है, सावित्री उसका क्या जवाब देती है। किस पति को पेड़ से नीचे उतारती है और गोद में लेकर के बैठती है और उधर धर्मराज यम के दूतों को ऑर्डर देता है कि जाओ यम के दूतों मृत्यु लोक में, एक औरत अपने पति को गोद में लिए बैठी उसके प्राण काट रही और गोद में लेकर के किस प्रकार बैठती है
पीड़ित उतरो पति देव पीड़ित उतरो पति देव का प्रया तेरा तेरी मर्ज में मैं जानू हूँ दुख सुख में तू पहले करूंगा पति अर्ज मेरा गोटा में सिरे हर के सोलिया मैं नाथ खींच लू तेरा छोड़ लाकड़ी इसे दुख में तू पाल में दुख पावे माया
समय उसको मंदे मंदे श्वास आते हैं जुबान लटखड़ा जाती है और माँ बाप याद आते हैं और कहता है सावित्री मेरे समान है भागा न कोई हुआ हर न कोई होगा क्यों
ये कर्म तेरे लोग की लकड़ी त्याग रे ईश्वर में जीत डाटे पूजा आशा की याद चला रे मेरे मात पिता अंधोरे छोड़ के मैं निर्भाग चला रे सावित्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सती सुहाग चला रे बिना परत के सुमत कहेंगे यो जंगल के दावे से आया भड़क लागे
श्वास आने लगते हैं उधर धर्मराज ऑर्डर देता है यम के दूत आते हैं मां से दो देवता का रूप धारण करके वो कहतू पहले आगे सार वो कहतू शायद तू मैं उन लायकी सावित्री के कानों में गुनगुनाहट सुनाई दी और उसने पीछे मुड़ करके देखा तो आंखों से आग की लपट निकली
और सावित्री में ये मान लिया तुम आपके तीन पुरुष की सती ऊपर है और तेरी सती के ऊपर देखते बहुत प्रसन्न तू मेरे से कोई तीन वरदान मांग सकती है लेकिन तेरे पति के प्राण धरती आसमान पलट सकते हैं लेकिन तेरे पति के प्राण नहीं बच सकते तू मेरे से तेरे सतीत्व को देखकर मैं प्रसन्न हूँ और वास्तव में मैंने साबित कर दिया तू वास्तव में सती पुरुष की सती औरत है तू मेरे से कोई तीन वरदान मांगे बोला महाराज के वरदान मांगा तो पति का प्राण तो बच्चों को वरदानों के तापा लेकिन वो तो विद्वान थी ना उसने कहा कि महाराज पहला वरदान मुझे ये दे कि मेरे सासू सुसरे दोनों आंखों से अंधे हो साक्षे हो जाए बोले गा हो जाएंगे दूसरा वरदान ये दे कि हमें हमारा राजपाट वापिस मिलना चाहिए बोले
गाँव से एक लड़का होना चाहिए बोले गाँव हो जाएगा इतनी देर पान खाएंगे बढ़ जाएगा
जीते जी दिन जिंदगी तो उस पति को गोद से अलग नहीं किया अगर गोद से अलग कर दे तो सती तो भंग हो जाए तो मिट्टी को छोड़ करके और उसके पीछे दौड़ी स्वर्ग की पड़े जाता है पल्लो पकड़े बोला आप पागल सावित्री यहाँ क्यों चलिए तेरे को वरदान दे दिया मृत्यु लोग से स्वर्ग लोग आ गई बोले महाराज सब कुछ हो जाएगा लेकिन आपने मुझे दत्ती पुरुष की सती और साबित किया है मेरे पति के बिना मेरी कुछ से लड़का कहां से होगा बोले है बोला सतियों के सामने मेरा सर झुका है और झुका ही रहेगा और नारद के वचन आज तक सावित्री किसी ने नहीं पलटाए आज तुम एक ऐसी औरत है जो नारद के वचनों को पलटा दिया और सावित्री में मारने वाला और गिराने वाला तूने मेरे को ही बतनी लहरा दिया जाओ जब तक धरती आसमान रहेंगे तेरा नाम रोशन रहेगा और शत्रु के सामने मेरा सर झुका है और झुका ही रहेगा जाओ मैं तेरे पति को वापिस जिंदा करता हूँ बोली सती सावित्री।